अब आप दर्शन कुमार झा की आवाज में पाश्चात्य काव्य शास्त्र देवेंद्रनाथ शर्मा द्वारा रचित को सुनिए। पहला अध्याय प्लेटो 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति साहित्य दर्शन कला विज्ञान आदि के मूल स्रोत का संधान करने वाले को अनिवार्यतः उस भूखंड में पहुंचना पड़ता है जिसे ग्रीस या यूनान कहते हैं। यूनान यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर अवस्थित एक प्रायद्वीप और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। स्वभावतः यूनान को बंदरगाहों की बेहद सुविधा है और यह सुविधा पूरे देश को उपलब्ध है क्योंकि यूनान का कोई भी स्थान समुद्र से 80 मील अर्थात 120 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। फलतः वहाँ के निवासी बहुत अच्छे नाविक और व्यापारी हुए हैं। यूनान एक प्रकार से यूरोप और एशिया के संधि स्थल पर पड़ता है इसलिए दोनों महादेशों में उसे व्यापारिक प्रसार का भी अवकाश रहा है। यूनान को मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं उत्तरी मध्यवर्ती और दक्षिणी। ये तीनों भाग पहाड़ियों से भरे हैं अतः यातायात की दृष्टि से दुर्गम रहे हैं। यही कारण है कि पूरी यूनान में कोई एक शासन कायम नहीं हो सका और छोटे छोटे नगर राज्यों सिटी स्टेट्स का विकास हुआ। ये नगर राज्य परस्पर स्वतंत्र तो थे ही शत्रुभाव से ग्रस्त थे इसलिए लड़ते भिड़ते रहते थे। भारत के इतिहास को भी ध्यान रखें तो बात साफ हो जाएगी। जैसे प्राचीन या मध्य युग में यहाँ के राज्यों में आपसी लड़ाइयाँ हुआ करती थी वैसे ही यूनान में भी। इससे भारत के समान यूनान में भी राष्ट्रीयता का विकास बाधित रहा। यूनानी प्रायद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक लगभग 20 राज्य थे जिनमें तीन सबसे प्रमुख थे। इन्हीं तीनों का इतिहास एक तरह से यूनान का इतिहास है। उत्तरी भाग में मकदूनिया मध्यवर्ती भाग में आट्टिका और दक्षिणी भाग में लाकोनिया। मकदूनिया को प्रसिद्धि मिली सिकंदर की जन्मभूमि होने से जिसने विश्व विजेता होने का सपना देखा था। आट्टिका की राजधानी एंथेस यूनान की समस्त बौद्धिक वैज्ञानिक एवं कलात्मक उपलब्धियों और चमत्कारों का उद्गम स्थल है जिसके कारण विश्व के इतिहास पर यूनान का नाम अमर है। लाकोनिया की राजधानी स्पार्टा का महत्व उसके शौर्य वीर्य और सैन्य शक्ति के कारण था। वस्तुतः एंथेस और स्पार्टा दो विरोधी आदर्शों विचारधाराओं और जीवन मार्गों के प्रतिनिधि थे। एंथेस ने बौद्धिक पक्ष को आश्रय दिया स्पार्टा ने शारीरिक पक्ष को। एथेंस में लोकतंत्र का विकास हुआ और स्पार्टा में अधिनायक तंत्र का। एथेंस ने स्वतंत्रता को काम्य माना स्पार्टा ने नियंत्रण को इसलिए जहाँ एथेंस में विचारक साहित्यकार और कलाकार उत्पन्न हुए वहाँ स्पार्टा में परिश्रमी पराक्रमी और योद्धा। 20वीं शताब्दी के प्रख्यात दार्शनिक बर्ट्रेंड रसल ने कहा कि संपूर्ण इतिहास में कुछ भी इतना आश्चर्यकर और अव्याख्यय नहीं है जितना यूनान में सभ्यता का आकस्मिक उदय। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अकस्मात एक ज्योति प्रज्वलित होती है जिसके अलौकिक आलोक से एथेंस में ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र उद्भासित होता है और 200 वर्षों के बाद न जाने वह ज्योति कहाँ तिरोहित हो जाती है कि फिर कभी उसकी कोई झलक भी नहीं दिखाई देती। यूनान के सुदीर्घ इतिहास में ऐसी चतुर्मुखी ज्योति न तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले कहीं दिखी और न 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद इसलिए रसल की टिप्पणी बिल्कुल सही है। एथेंस की महत्ता और गरिमा का आरंभ तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में ही हो जाता है किंतु इसका विस्मयकारी रूप 5वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। यो एथेंस 5वीं शताब्दी में भी पूर्णतः विघ्न बाधाहीन नहीं था। ईरान ने 10 वर्षों के भीतर यूनान पर दो बार 490 ईस्वी पूर्व और 480 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया पर दोनों बार उसे मुँह की खानी पड़ी। 480 ईस्वी पूर्व के युद्ध में मराथोन के मैदान में ईरान की ऐसी करारी हार हुई कि यूनान पर फिर आक्रमण करने का उसे साहस नहीं हुआ और 4वीं सदी में तो पासा ही पलट गया जब सिकंदर ने ईरान को ही पराजित कर यूनानी साम्राज्य में मिला लिया। मराथोन के युद्ध में यूनान की विजय हुई जरूर किंतु जनधन की हानि हुई इतनी कि बौद्धिक कार्यकलाप अवरुद्ध सा हो गया। पेरिक्लेस 500 से 429 ईस्वी पूर्व का 30 वर्षों 460 से 430 ईस्वी का शासनकाल एथेंस के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। उसके जैसा सुसंस्कृत सुशिक्षित दूरदर्शी कल्पनाशील राजनीति कुशल कला प्रवीण वाग्मी और लोकप्रिय शासक एथेंस में दूसरा नहीं हुआ। अपने इन दुर्लभ गुणों के कारण वह लगातार 15 बार एथेंस का शासक निर्वाचित हुआ और उसके शासन में एथेंस की आशातीत प्रगति हुई। सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक साहित्यिक सभी क्षेत्रों में उसकी देन अभूतपूर्व रही। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यूरोप में पुनर्जागरण युग 14वीं सदी ईस्वी से पहले कहीं भी इतनी रचनात्मक स्फूर्ति सक्रियता और समृद्धि दृष्टिगोचर नहीं होती जैसी पेरिक्लेस के शासनकाल में। सोफोक्लेस 495 से 405 ईस्वी पूर्व, एवरिपिडेस 480 से 406 ईस्वी पूर्व और एस्किलुस 525 से 456 ईस्वी पूर्व जैसे विख्यात दुखांतक ट्रेजडी नाट्यकार अरिस्टोफानेस 445 से 385 ईस्वी पूर्व जैसा अद्भुत प्रसहनकार प्रहसनकार और सोक्रेटिस 470 से 299 ईस्वी पूर्व जैसा महान विचारक, पिंडार 522 से 443 ईस्वी पूर्व जैसा यशस्वी प्रगीतकार, हेरोडोटस 480 से 425 ईस्वी पूर्व, थुकीडिडेस 464 से 404 ईस्वी पूर्व जैसा प्रसिद्ध इतिहासकार, हिप्पोक्रेटिस 460 से 377 ईस्वी पूर्व जैसा लब्धकृति चिकित्सक, एम्पेडोक्लेस और डेमोक्रिटस 460 से 357 ईस्वी पूर्व जैसा गंभीर वैज्ञानिक, पेरिक्लेस युग की ही देन है। बर्ट्रेड रसल का कहना है कि संभवतः संपूर्ण इतिहास में पेरिक्लेस युगीन एथेंस की उपलब्धियां विलक्षणतम है। पेरिक्लेस के पहले एथेंस यूनान के ही कई राज्यों से पीछे था। वहां किसी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु विजय, वैभव और निर्माण के प्रेरणा के फलस्वरूप एक से एक नाटककार, मूर्तिकार, वास्तुकार उत्पन्न हुए, जिनकी कृतियां 2500 वर्षों के बाद भी आज अपनी रमणीयता एवं कलात्मकता से लोगों को मोह लेती है। वस्तुतः उनसे उत्कृष्टतर कृतियां यूरोप में आज तक निर्मित नहीं हो पाई। यदि 430 ईस्वी पूर्व के लगभग हम एथेंस की जनसंख्या 230,000 पर ध्यान दें तो इसकी उपलब्धियां और भी आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। 230,000 भी कोई जनसंख्या हुई? यह तो पटना या लखनऊ की एक तिहाई आबादी से भी कम है। इतनी कम आबादी के किसी नगर ने कहीं भी और कभी भी बौद्धिक ऊर्जा तथा कलात्मक प्रकर्ष के ऐसे भव्य कीर्तिमान स्थापित नहीं किए हैं। पेरिक्लेस का शासन उस कीर्तिमान का चरम बिंदु है, जिसके शासन का अंत होते न होते यूनान का ह्रास आरंभ हो गया। पेरिक्लेस के शासन के अवसान के एक वर्ष पहले अर्थात 431 ईस्वी पूर्व में स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया। हम देख चुके हैं कि स्पार्टा ने बुद्धि पक्ष की कभी चिंता नहीं की, उसने केवल शारीरिक बल पर ध्यान दिया और सैन्य शक्ति को बढ़ाया। अतः इस युग में बौद्धिकता के उपासक एथेंस का पल्ला हल्का होना ही था। आश्चर्य इसका नहीं कि एथेंस पराजित हुआ, आश्चर्य इसका कि यह युद्ध, जिसे पेलोपोनेशिया का युद्ध कहते हैं, 27 वर्षों तक चलता रहा और इतने दिनों तक एथेंस स्पार्टा का मुकाबला करता रहा। किंतु असमानों का युद्ध आखिर कब तक चलता? 404 ईस्वी पूर्व में एथेंस की हार हुई और एथेंस हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। वह फिर कभी खड़ा नहीं हो सका, किंतु राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो जाने पर भी उसकी बौद्धिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रकर्ष जो का त्यों बना रहा, बल्कि काल की गति के साथ क्रमशः बढ़ता गया और अंततः संसार की कालजयी संस्कृतियों का अंग बन गया। प्लेटो को समझने के लिए यह संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आवश्यक है। इससे अवगत नहीं होने के कारण अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं और वे समाहित रह जाते हैं। कहना अपेक्षित है किसी देश के साहित्य, संस्कृति, दर्शन, कला आदि को ठीक ढंग से समझने के लिए वहाँ के इतिहास का थोड़ा ज्ञान अपरिहार्य है। प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्लेटो उच्चारण अंग्रेजी के अनुसार है। इस शब्द का यूनानी उच्चारण प्लाटोन है, जो अरबी में अफलातून के रूप में प्रचलित है। इस पुस्तक में अंग्रेजी का ही उच्चारण रखा गया है, क्योंकि यूनानी उच्चारण रखने से पाठकों को अनावश्यक भ्रम होगा। प्लेटो मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों से एथेंस के समृद्ध अभिजात कुलों से संबंधित थे। उनका एथेंस पर व्यापक राजनीतिक प्रभाव था। एथेंस पर स्पार्टा का आक्रमण प्लेटो के जन्म के 4 वर्ष पहले हुआ था। जैसा हम देख आए हैं कि यह युद्ध 27 वर्षों तक चला और 404 ईस्वी पूर्व में एथेंस की पराजय के साथ समाप्त हुआ। तात्पर्य कि प्लेटो का शैशव किशोर और यौवन का आरंभिक भाग युद्ध की काली छाया में बीता। उन्होंने युद्ध की विभीषिका ही नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि को ग्लानिजनक पराजय भी अपनी आंखों से देखी। जब वे रिपब्लिक में कहते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, तो समझते देर नहीं लगती कि इस आक्रोश की तीव्रता स्वानुभूत है। स्पार्टा के बाहुबल के सामने एथेंस के बुद्धिबल ने घुटने टेके होंगे, तो भावुक चिंतनशील प्लेटो पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? यह सहज ही अनुमेय है। निसर्गतः कवि और कला प्रेमी प्लेटो की अपने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात अटपटी सी लगती है। आलोचकों ने प्लेटो के कवि विरोधी दृष्टिकोण का केवल उल्लेख कर दिया है, किंतु किसी ने इस विरोधाभास का समाधान प्रस्तुत नहीं किया। हमें इसकी समाधान एथेंस की उपयुक्त पराजय में मिला। काव्य और कला के शौर्य वीर के विकास में बाधक मानकर ही प्लेटो ने कवियों की बहिष्कार की बात कही। उन्हें काव्य मात्र से परहेज नहीं था, देव स्तोत्रों और महापुरुषों के आख्यानों का तो उन्होंने स्वागत ही किया है। उनके आक्रोश के विषय है दुखांतक, जो रोने धोने को बढ़ावा देकर समाज को कमजोर बनाते हैं। क्योंकि कमजोर समाज अपनी स्वतंत्रता की भी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वैसे साहित्य का लेखक राज्य में रहने का अधिकारी नहीं जो बल और पौरुष को जगाने के बदले अस्ट्रेन बनाता है। 404 ईस्वी पूर्व में एथेंस की पराजय हुई और उसके 5 वर्षों के बाद 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड मिला। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। रूढ़ अर्थ में कभी अध्यापन नहीं किया। उनकी दृष्टि में अध्यापन करने का सबसे अच्छा तरीका था संवाद अर्थात प्रश्नोत्तर, जिसमें अध्यापक और अध्येते दोनों सहभागी हो। एथेंस की सड़कों पर चलते हुए सुकरात कहीं भी नौजवानों को बटोर लेते थे और उन्हें देख नवयुवकों का झुंड खुद ही इकट्ठा हो जाता था और वे प्रश्नोत्तर में जुट जाते। सुकरात के आचार विचार, रहन सहन, तौर तरीके इतने रूढ़ि विरोधी थे कि रूढ़िवादी उनसे खार खाए रहते। सुकरात बुद्धि और तर्क के अतिरिक्त किसी भी बाह्य सत्ता का उपदेश मानने को तैयार न थे। उनकी विचार सरणी में भावना का स्थान नहीं था। वे आत्मदीपो भव के प्रचारक थे, इसलिए हर तरह के अधिकार के प्रति, वह राजनीतिक भी क्यों न हो, उनका विद्रोह स्वाभाविक था। उम्र में कोई बड़ा है इसलिए उसका कहना मानना जरूरी है। माता पिता होने मात्र से संतान के लिए उनका आदर्श पालन कर्तव्य की कोटि में नहीं आता। सुकरात का आदर्श था परिणाम की चिंता छोड़कर परिवार और परिवेश की चिंता छोड़कर एकनिष्ठ भाव से ज्ञान और सत्य का अनुसंधान। इसमें कभी अस्खलन नहीं, कोई समझौता नहीं। आचार शास्त्र में सुकरात उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अनुसार शिव वही है जो उपयोगी है, दैट्स गॉड इज हु इज यूजफुल। सुकरात की सत्ता विषयक अवज्ञा की सीमा में मनुष्य ही नहीं देवता भी थे। प्रचलित लोकप्रिय धर्म तर्क की कसौटी पर जल्दी खड़ा नहीं उतरता था। जो तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता वह सुकरात को मान्य नहीं था। ईश्वर में उनकी आस्था थी किंतु ईश्वरीय विधि विधान के संबंध में उनका दृष्टिकोण अज्ञेयवादी था। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक लोकतांत्रिक स्वाधीनता का उपयोग करने पर भी लोकतंत्र के दोषों की आलोचना करने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। उदाहरणार्थ लॉट के द्वारा दंडाधिकारियों का चयन उन्हें बिल्कुल अभिमत नहीं था। अज्ञान, पाखंड, अंधविश्वास आदि की आलोचना के कारण न वे जनसाधारण में लोकप्रिय थे न अहनमय बुजुर्गों के बीच, जिनकी बददिमागी का वे हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। प्लेटो जैसे अनेक प्रतिभाशाली युवकों के हृदय में सुकरात ने संदेहवाद और प्रश्नवाद की, बौद्धिक साहस और बौद्धिक स्वातंत्र की भावना भर दी थी, जो यथास्थिति का समर्थन करने वाली रूढ़िवादी विचारणा को ग्राह्य नहीं थी। सुकरात के संवादों से यूनान में एक प्रकार का व्यक्तिवाद उभरा, जिससे रूढ़िवादियों को आशंका हुई कि यह सामाजिक संगठन के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने सुकरात पर ईश्वर को नहीं मानने का, ईश्वर के स्थान पर विचित्र, अतिलौकिक अर्थात सुपरनेचुरल जीवों को प्रतिष्ठित करने का और युवकों को दूषित करने का आरोप लगाया। इस आरोप पर विचार करने के लिए 501 निर्णायकों की अदालत बैठी। अदालत ने 60 के बहुमत से सुकरात को अपराधी ठहराया और गणतंत्र के कानून के अनुसार उन्हें मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड के निर्णय से सुकरात के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जेल में भी उनके संवाद का क्रम यथावत चलता रहा। मृत्यु के क्षण तक युवकों की मंडली उनकी विचारोत्तेजक बातें सुनती रही। सुकरात अपने हाथों से जहर पीते हुए, प्रसन्न वदन बातें करते हुए धीरे धीरे चिरनिंद्रा में डूब गए। मृत्यु के समय उनकी उम्र 70 वर्ष थी। जैसा होता है मृत्यु के बाद सुकरात सर्वत्र आदर, श्रद्धा, गर्व और शोक के पात्र बन गए। मृत्यु की दारुणता ने उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। सुकरात के साथ ही उठा अंतेवासियों ने उनकी मृत्यु के लिए निरंकुश विवेकहीन लोकतंत्र को कभी माफ नहीं किया। एथेंस की पराजय और सुकरात के मृत्युदंड ने लोकतंत्र में प्लेटो की आस्था दिगाड़ी। वह लोकतंत्र किस काम का जो व्यक्तिक और वैचारिक स्वतंत्रता का दम तो भरता है परंतु शारीरिक बल की उपेक्षा कर युद्ध में पराजित होता है और परतंत्र बन जाता है। इससे भी भयंकर बात यह कि एक ओर तो लोकतंत्र वैचारिक स्वतंत्रता का दम भरता है और दूसरी ओर एक बुद्धिवादी को तर्क का प्रचार करने के लिए मौत के घाट उतार देता है। और 501 में 280 निर्णायक इस जघन्य निर्णय के पक्ष में अपना मत देते हैं। इससे तो स्पार्टा की कठोर अधिनायकवादी शासन व्यवस्था कहीं अच्छी, जो न तो पराजय की ग्लानी का अनुभव करती है और न बुद्धिवादी होने के लिए किसी को मृत्युदंड देती है। जैसा कहा जा चुका है प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। शिष्य भी साधारण नहीं, अपूर्व मेधावी, पूर्णतः अनुगत और सर्वात्मना समर्पित। उन्होंने सुकरात के विचारों को ही नहीं उनकी पद्धति और शैली को भी ग्रहण किया। अंतर केवल इतना है कि जो काम सुकरात प्रवचन के द्वारा करते थे उसे प्लेटो ने लेखन के द्वारा किया। इसका एक लाभ यह हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा हुआ लिखित होने से अस्थायी बन गया। प्लेटो का लेखन अपने गुरु की ही शैली पर संवाद के रूप में है। दो या दो से अधिक पात्र एकत्र बैठते हैं, उनमें कोई प्रश्न करता है और सुकरात उत्तर देते हैं। स्मरणीय है कि प्लेटो के सभी संवादों के प्रश्नकर्ता चाहे जो भी हो, उत्तरदाता या प्रवक्ता, केवल सुकरात है। इन संवादों में प्लेटो कहीं नहीं है। लगता है कि उन्होंने अपनी गुरुवाणी को केवल लिपिबद्ध कर दिया है। विचार सारे के सारे जैसे सुकरात के हों, यह निश्चय ही प्लेटो की गुरुभक्ति की पराकाष्ठा है कि वे सब कुछ गुरु का ही कहकर प्रस्तुत करते हैं, अपने को भूल कर भी आगे नहीं लाते। गुरु से उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा, किंतु उनके जैसे चिंतनशील, कल्पनाशील और तार्किक ने अपने विचार भी कम नहीं होंगे, पर अपने को उन्होंने कहीं भी सामने नहीं आने दिया है। इसलिए उनके संवादों में ऐतिहासिक सुकरात व सांवादिक सुकरात के बीच भेद करना असंभव हो जाता है। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव निसंदेह अत्यंत गंभीर पड़ा। प्लेटो की काव्यात्मक भव्य उद्दात शैली बताती है कि वे मूलतः कवि थे। उनके लेखकीय जीवन का आरंभ हुआ भी नाटकों और कविताओं की रचना से, किंतु सुकरात के प्रभाव में आने पर उन्होंने उन ललित रचनाओं को नष्ट कर दिया और गुरु का अनुसरण करते हुए भावना को छोड़ तर्क का मार्ग अपना लिया। गुरु के अधूरे कार्य को पूरा करना और आगे बढ़ना ही उनका लक्ष्य बना। प्लेटो के साहित्य लोचक रूप पर विचार करते हुए स्मरण रखना चाहिए कि वे आलोचक नहीं दार्शनिक है। अतः उनका उद्देश्य आलोचनात्मक सिद्धांतों का निरूपण नहीं, बल्कि अपने गुरु की और अपने दार्शनिक मान्यताओं का उपस्थापन है। दूसरा, उन्होंने आलोचनाओं पर स्वतंत्र या व्यवस्थित रूप से कुछ नहीं लिखा है, बल्कि अन्य प्रसंगों में काव्य या नाटक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस तरह के विचार अनेक संवादों में बिखरे हैं, जैसे इयोन, कार्टिलुस, गॉर्जियस, फेद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र आदि में है। इनमें आलोचनात्मक सामग्री के दृष्टि से इयोन, फेद्रुस और रिपब्लिक, द्वितीय, तृतीय और दशम अध्याय अधिक उपादेय है। प्लेटो के दर्शन में मुख्यतः निम्नलिखित पांच विषयों का निरूपण है। पहला, आदर्श राज्य, दूसरा, प्रत्यय सिद्धांत, तीसरा, आत्मा की अमृत सिद्धि और चौथा, सृष्टि समागम और पांचवा, ज्ञान मीमांसा। इनमें प्लेटो की आलोचनात्मक धारणा आदर्श राज्य के संदर्भ में ही अधिकतर व्यक्त हुई है। वे स्पार्टा द्वारा एथेंस की पराजय से इतने विचलित थे कि एथेंस की साहित्यिक, कलात्मक और बौद्धिक प्रकर्ष उनके समक्ष महत्वहीन बन गया और वे चाहते थे कि एथेंस इतना शक्ति संपन्न हो जाए कि पराजय का अवसर दोबारा न आए। इसके लिए उन्हें शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि भावी नागरिकों को बनाने बिगाड़ने का सबसे समर्थ माध्यम शिक्षा ही है। प्लेटो के तर्क का रूप कुछ इस प्रकार है। सभी मनुष्य आदर्श राज्य अर्थात अच्छा शासन चाहते हैं। शासन अच्छा तभी हो सकता है जब उसके नागरिक अच्छे हों। नागरिक तभी अच्छे होंगे जब उनकी शिक्षा अच्छी होगी। अच्छी शिक्षा तभी संभव है जब विषय अच्छे वे ही हैं जो तन और मन को अधिक से अधिक अच्छा बनाए। तन अच्छा हो अर्थात स्वस्थ और सबल हो, मन अच्छा हो अर्थात सुसंस्कृत और निर्भीक हो। इसके दो ही विषय अपेक्षित है, तन के लिए व्यायाम और मन के लिए संगीत। शिक्षा का आरंभ इन्हीं दो विषयों से होना चाहिए। इनके द्वारा तन मन के परिष्कार और विकास के बाद ही दूसरे विषय पढ़ाए जाने चाहिए। सोवियत संघ आदि समाजवादी देशों में आज प्लेटो द्वारा निर्धारित पद्धति ही प्रचलित है। व्यायाम और संगीत पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अनिवार्य है। सुकरात का दृष्टिकोण भौतिक, नैतिक और सामाजिक था। भौतिक जीवन में जो उपयोगी हो और नैतिक जीवन में जो सात्विक हो, वही अभिलषणीय है। सच पूछिए तो सुकरात के विचार में सुंदरता और उपयोगिता, ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। प्लेटो संस्कार और स्वभाव से कवि है तथा शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक, इसलिए काव्य और दर्शन के सापेक्ष महत्व को लेकर उनमें प्रायः अंतर्द्वंद दिखाई देता है। कभी वे काव्य और दर्शन के पुराने कलह की याद दिलाते हैं, तो कभी काव्य को ईश्वरीय प्रेरणा से उद्भूत कहकर उनकी प्रशंसा करते हैं। कभी होमर की तारीफ के पुल बांधते हैं, तो कभी उन्हें समाज के लिए घातक बताते हैं। हमारा अनुमान है कि जीवन के आरंभ में उन पर काव्य का गंभीर तथा अनुकूल प्रभाव था, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और परिपक्वता आती गई, वैसे वैसे दर्शन का प्रभाव बढ़ता गया और काव्य का आकर्षण घटता गया। हमारे इस अनुमान की पुष्टि प्लेटो के ही कथन से होती है। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में वे ग्लाउकोन संवाद के श्रोता से कहते हैं, यद्यपि अपने यौवन के आरंभ से ही होमर के लिए मुझमें संभ्रम तथा प्रेम रहा है, जिससे अब भी मेरे शब्द ओठों पर लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि होमर मोहक दुखांत की पूरे समुदाय के महान नेता और गुरु है, किंतु सत्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक सम्मान नहीं दिया जा सकता। और प्लेटो का सत्य है कि समाज पर काव्य का प्रभाव घातक होता है। ऊपर के उदाहरण से अब भी शब्द ध्यान देने योग्य है। उम्र और ज्ञान की परिपक्वता के बाद भी प्लेटो पर होमर का ऐसा अंतर्स्थित प्रभाव है कि उनके विरुद्ध कुछ कहने में शब्द ओठों पर आकर भी लड़खड़ाने लगते हैं, आसानी से निकल नहीं पाते। यह परिस्थिति की बाध्यता है कि जो उनसे होमर के विरुद्ध कहलाती है। प्लेटो द्वारा काव्य की आग्रहता के दो आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक है। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। वह नित्य है और एक अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय परम सत्य का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान प्रत्यय अर्थात परम सत्य का, दूसरा स्थान उसके आभास या प्रतिबिंब अर्थात वस्तु जगत का, और तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब कला जगत का। इसलिए परम सत्य से कला का तीसरा अलगाव है और अनुकरण का अनुकरण होने से वह मिथ्या है। प्लेटो के शब्दों में कला सत्य से त्रिधा अपेट है अर्थात ट्राइस रिमूव्ड है। प्लेटो अपनी बात एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु एक नित्य रूप होता है जो प्रत्यय अर्थात विचार या धारणा में ही रहता है। यह रूप ईश्वर निर्मित हुआ करता है। प्रत्यय अर्थात विचार में वर्तमान उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण होता है। प्लेटो द्वारा दिया गया पलंग का दृष्टांत लें। यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यय में है और जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है, क्योंकि सभी वस्तुओं का प्रथम प्रत्यात्मक अर्थात आइडियल निर्माण ईश्वर ही करता है। उस प्रत्यय के आधार पर बढ़ई लकड़ी के पलंग का निर्माण करता है और उसके द्वारा निर्मित पलंग का चित्र कलाकार अंकित करता है। इस प्रकार तीन पलंग हुए, एक तो वह जिसका निर्माण ईश्वर करता है और जो हमारे प्रत्यय विचार में रहता है, दूसरा वह जिसका निर्माण बढ़ई करता है और तीसरा वह जिसका निर्माण कलाकार करता है। ईश्वर, बढ़ई और चित्रकार ये तीनों पलंग के निर्माता है, किंतु तीनों के पलंग में अंतर है। सबसे पहले कोई वस्तु प्रत्यय में ही उद्भासित या रूपायित होती है, फिर उसके अनुकरण पर निर्माता उसे ठोस आकार देता है। यह आकार यथार्थ प्रत्यय स्थित वस्तु की नकल होता है, इसलिए इसकी स्थिति यथार्थ से दूसरे स्थान पर है। और चूंकि कलाकार कवि चित्रकार या मूर्तिकार किसी माध्यम शब्द रंग या पत्थर के द्वारा उस ठोस वस्तु की नकल कर उसे एक नया रूप देता है, इसलिए वह यथार्थ तीसरे स्थान पर है। चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। निष्कर्षता और यथार्थ अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न राज्य का। प्लेटो के कथन का सारांश, पहला प्रत्यय जगत यथार्थ है, ईश्वर उसका सृष्टा है। दूसरा वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है, कारीगर या उसका निर्माता है। तीसरा कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण है, कलाकार उसका अनुकर्ता है। प्लेटो के अनुसार कला यथार्थ या सत्य की त्रिधा अपेट अर्थात ट्राइस रिमूव्ड है, अतः सर्वथा मिथ्या और अनुपयोगी है। यह तर्क चित्रकला पर ही नहीं काव्य और नाटक पर भी लागू है। होमर और हेसियोड 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जैसे कवियों के काव्य अथवा एस्खिलुस, सोफोक्लेस, एडिपिडेस, आरिस्टोफानेस जैसे नाटककारों के नाटक भी अपवाद नहीं है। इन कृतियों को पढ़ने, सुनने या देखने से अच्छे नागरिकों का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए इन पर नियंत्रण आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडिसी में देवताओं का चित्र जैसा चित्रित है, वह असत्य भी है और अनुचित भी, क्योंकि उन्हें क्रूर, लोभी, कलही, प्रतिशोधी आदि रूपों में चित्रित किया गया है। अपनी निर्बलताओं के कारण ऐसे देव चरित्र साधारण मानवों के धरातल पर आ जाते हैं। फिर उनका देवत्व क्या रहा और वे मनुष्यों के बौद्धिक आत्मिक उन्नयन में सहायक कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार वीरों के नायकों की चित्र भी निर्बलताओं से रहित नहीं है, उनमें भी वे दोष हैं जो देवों में दिखाई दे गए हैं। तात्पर्य यह, न तो देवों का चित्र आदर्श है न वीरों का, उनसे मनुष्यों को कोई सत्प्रेरणा नहीं मिल सकती। होमर और हेसियोड के काव्यों में ऐसे स्थल आए हैं जो पाठकों श्रोताओं के मन में भय उत्पन्न करते, इसलिए उन्हें धीर और साहसी के बदले भीरू और कापुरुष बनाते हैं। काव्य ऐसा होना चाहिए जो नवयुवकों के सौ में शौर्य की भावना बढ़े और मृत्यु की लालसा जगाए, क्योंकि दास्ता मृत्यु से भी बुरी चीज है। होमर के काव्य में ऐसे उत्सवों का वर्णन है जिनसे भोग और विलास की कामना उत्तेजित होती है और देवताओं का लोप प्रकट होता है। इस प्रकार के वर्णन शुद्धता, सात्विकता और संयम में बाधक है, अतः त्याज्य है। काव्यों में ऐसी भी कहानियां आई हैं जिनमें सज्जन तो दुख भोगते दिखाए हैं और दुर्जन दुख सुख भोगते। ऐसे विधान में सदाचार के लिए दंड और कदाचार के लिए पुरस्कार होगा, वहां नैतिकता कैसे टिकेगी? कोमल बुद्धि बालकों और नव युवकों पर ऐसी कहानियों का प्रभाव बहुत ही अनिष्टकारी पड़ेगा। नाटकों में अभिनेता नाटकीय पात्रों का अभिनय करते हैं। पात्र अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। बुरे पात्रों का लगातार अनुकरण करने से अभिनेताओं में भी उनकी बुराइयां आ जाती है, वे भी कायर, लंपट, धूर्त, वंचक बन जाते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है। यही नहीं, इसका असर देह, दिमाग और आवाज पर भी पड़ता है। इस प्रकार समाज में अच्छाइयों के बदले बुराइयां फैलती है। प्लेटो ने यहाँ बुरे पात्रों के प्रभाव की बात तो कही, पर अच्छे पात्रों के प्रभाव की बात छोड़ दी। यदि बुरे पात्रों के अनुकरण से अभिनेताओं में बुराइयां आ सकती है, तो अच्छे पात्रों के अनुकरण से अच्छाइयां भी तो आ सकती है। प्लेटो ने यह पांच प्रमुख लक्षण बताए। आगे के कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। छठा दुखांतकों में कलह हत्या विलाप आदि और सुखांतकों में विद्रूपता अभद्रता मस्खड़ापन आदि देखने सुनने से दृष्टा श्रोता के मन में निकृष्ट भाव उदित होते हैं। इससे कुरुचि बढ़ती है और अनुशासन में शिथिलता आती है। एक बात और, दूसरों के सम्मुख शोक दुख विलाप आदि के प्रकटन से मनुष्य को स्वाभाविक संकोच होता है, परंतु इसके प्रतिकूल दुखांतकों में इसका उन्मुख प्रदर्शन होता है। सत और महान पात्र भी आंसू बहाते छाती पीटते दिखाई जाते हैं। इससे उनकी चारित्रिक महत्ता तो खंडित होती ही है, उनको देखकर दूसरों को भी वैसा करने की प्रेरणा मिलती है। कोई भी कुलीन एवं शालीन व्यक्ति निजी जीवन में दुख शोक आदि का सामना शांत और धीर भाव से करता है और दूसरों के सामने अपनी कमजोरी प्रकट करने में संकोच करता है, किंतु नाटक में अभिनय से उद्वेलित होकर वही व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है और हजारों के सामने आंसू बहाने में भी संकोच नहीं करता। रोने बिलखने की इस संक्रामकता से समाज में वीर भाव आच्छन्न तो होता ही है, उच्छिन्न भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रहसनों का हल्कापन अनुकर्ता अर्थात अभिनेता तथा दृष्टा अर्थात प्रेक्षक दोनों के आचरण की गंभीरता को धीरे धीरे छीन करता है, जिसके कारण वे उद्दात कार्यों को भी करने के योग्य नहीं रह जाते। सातवां, कोई व्यक्ति जीवन में गंभीरता से काम करे और नाटक में हल्केपन से, यह असंगत है। फिर वही व्यक्ति दुखांतक में भी अभिनय करे और सुखांतक में भी, और दोनों में सफलता प्राप्त करे, यह संभव नहीं, क्योंकि दोनों में सर्वथा भिन्न प्रकार के अभिनय अपेक्षित है। किसी व्यक्ति की प्राकृतिक विशेषता किसी एक ही प्रकार के अभिनय के अनुकूल हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की क्षमता की सीमाएं हैं और अभिनेता भी उनसे परे नहीं है। आठवां, प्राज्ञ और प्रशांत व्यक्ति सदा एक रस रहते हैं, अतः ना तो अभिनेता के लिए उनका अनुकरण सरल है, न भावक के लिए आस्वाद, क्योंकि रंगशाला में प्रेक्षकों का एक ऐसा मिश्रित समुदाय होता है कि उनमें बहुसंख्यक प्रेक्षक अनेक उद्दात भावों से बिल्कुल अपरिचित रहते हैं। इसलिए जो नाटककार लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं वे हल्के और ओछे भावों का ही चित्रण पसंद करते हैं। इससे समाज में हल्कापन और ओछेपन का प्रसार होता है। दम्मा, काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा अर्थात भाव के उच्छलन से उत्पन्न होते हैं, तर्क से नहीं। प्लेटो के अनुसार तर्क निरपेक्ष कोई भी वस्तु अग्राह्य है, भाव से उद्भूत और भाव पर ही आधारित होने से काव्य या नाटक के तर्क का अवकाश नहीं रहता, इसलिए वो अग्राह्य है। दसवां, इससे भी बड़ी बात यह है कि भाव मूलक होने से काव्य भाव को ही उद्दीप्त कहा जाता है, उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। हृदय को भी प्रभावित करता है, बुद्धि को नहीं। काव्य मनोरोगों का पोषण और सेचन करता है। भाव की इस उद्दीप्त के दो दुष्परिणाम होते हैं, एक तो सत्य को देखने समझने की दृष्टि आविल हो जाती है, फलतः सत्य और शिव का ज्ञान नहीं हो पाता, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। दूसरे, भाव का अतिरेक संयम तथा संतुलन को बाधित करता है। इससे समाज में वीरता के बदले विलास बढ़ता है, जो शासकों को उत्तेजनीय और अस्ट्रेन बना देता है। 11, कुछ लोग काव्यगत असत्य का समाधान यह कहकर प्रस्तुत करते हैं कि वह अन्योक्ति है, इसलिए इसमें कोई औचित्य नहीं, अनौचित्य नहीं कि वह असत्य से सत्य का पर जाने का मार्ग है। असत्य वर्तमानी स्थित्वा तथा सत्यम समीहते। प्लेटो का कहना है कि बालक या नवयुवक में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह अन्युक्ति तथा यथार्थ में भेद कर सके। वह जो कुछ भी ग्रहण करता है उसका प्रभाव उसके मन पर इतना गहरा और अमित होता है कि वह आजन्म उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए इसके समक्ष वैसी ही कहानियां आनी चाहिए जो शुद्ध और नैतिक विचारों से संपन्न हो। रिपब्लिक में प्लेटो का उपसंहार वचन है कि जब कोई अभिनेता हमारे यहाँ आता है और अपने को और अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहता है, हम उसके सामने घुटने टेक कर मधुर पवित्र और विलक्षण जीव के रूप में उसकी पूजा करेंगे, किंतु उसे हम यह भी अवश्य बता देंगे कि उसके जैसे लोगों का हमारे राज्य में रहने की अनुमति नहीं है, कानून उन्हें नहीं रहने देगा। अतः उसके शरीर में सुगंधित अंग पराग लगाकर उसके सिर में ऊन की माला पहनाकर हम उसे दूसरे नगर में भेज देंगे, कारण कि अपनी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए हम सूक्ष्मतर और कठोरतम कवि को ही रखेंगे जो सच्चरित्रों के गुणों का ही अनुकरण करे। स्पष्ट है कि प्लेटो का काव्य नाटक विषय का विरोध साहित्येतर प्रतिमानों से प्रेरित है। राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक निकषों पर काव्य के परीक्षण की ये निष्कर्ष सर्वथा स्वाभाविक है। प्लेटो का सबसे अभ्यर्थित उद्देश्य है आदर्श राज्य की स्थापना, जिसके नागरिक अप्रतिम सूरवीर हो, शुद्ध तर्कवादी हो और पूर्णतः सत्यनिष्ठ हो। उसके राज्य में भोग विलास भाव आवेग धूर्तता वंचकता आदि सर्वथा वर्जित है। एक बड़ी रोचक बात यह है कि प्लेटो झूठ बोलने का अधिकार केवल शासकों को देते हैं, नागरिकों को नहीं। वैदिकी हिंसा न भवती के अनुसार शासक जो झूठ बोलते हैं वह शायद झूठ नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्लेटो की उपनी निर्दिष्ट आपत्तियां आपातः जितनी सबल और समीचीन प्रतीत होती है उतनी है नहीं। उपर्युक्त मंतव्यों को देखकर जरा भी संदेह नहीं रहता कि प्लेटो काव्य और नाटक के घोर विरोधी हैं। ऐसे विरोधी जो कवियों को अपने आदर्श राज्य से निकाल देने का प्रस्ताव कर बैठते हैं, किंतु यह उनका एक पक्ष है, निषेध पक्ष है। फिर भी यह स्पष्ट है कि इतना स्पष्ट और जोरदार है कि उनका विविध पक्ष इससे दब गया है और ढक गया है। समुचित मूल्यांकन के लिए उसे भी देखना जरूरी है। प्लेटो काव्य मात्र का नहीं बल्कि वैसे काव्य का अपलाप करते हैं जो नागरिकों में भीरुता, निर्बलता, अनैतिकता का संचार करता है, जो उन्हें सत्य और शिव से हटाकर असत्य और अशिव की ओर ले जाता है, जो देवों और वीरों के चरित्रों में गर्हित दोष दिखाकर उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करता है। प्लेटो का यह काव्य पूर्णतः अभिमत एवं ग्राह्य है, जिसमें देवों के अष्टोत्र और प्रसिद्ध पुरुषों के गुणगान हो। प्लेटो अपने आदर्श राज्य से कवियों को बहिष्कृत करने की बात कहते हैं, क्योंकि कवियों की शक्ति और प्रभाव से परिचित है। काव्य के सौंदर्य और आकर्षण से, कलाओं की अनुरंजकता एवं मनोहारिता से वे अवगत हैं। वे दर्शन और काव्य के पुराने विरोध की चर्चा करते हुए दर्शन के प्रति अपना पक्षपात इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि काव्य की लोकप्रियता देख चुके हैं। वह यह भी देख चुके हैं कि होमर की दोनों महाकाव्य एथेंस की शिक्षा के अनिवार्य अंग है। जिस तरह आज के 30-40 साल पहले हिंदी क्षेत्र में गोसाई जी की रामायण थी, कन्या की शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र था कि वह रामायण पढ़ लेती थी, और रामायण का पारायण करने वाला पुरुष अपनी शिक्षा में किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं करता था। एस्किलोसोफोक्लेस, एउरिपिडेस ये आदि लेखकों ने नाटक एथेंस में 20,000 प्रेक्षकों के सम्मुख मुक्ताकाश रंगमंच पर अभिनीत होते थे और प्रेक्षक तन्मय होकर सुदबुद्ध खोकर उन्हें देखते थे। प्लेटो की जैसा इस स्थिति का दृष्टा और ज्ञाता काव्य नाटक की रमणीयता से अप्रभावित कैसे रह सकता था, खासकर जब उसे उच्च कोटि का कवि हृदय मिला हो। प्लेटो ने काव्य नाटक के संबंध में जो आपत्तियां उठाई है उसकी जरा समीक्षा करें। होमर ने देव चरित्रों का जो चित्रण किया है वह मिथकीय आख्यानों के आधार पर, जिसका जैसा चरित्र मिथकों में है उसका वैसा ही चरित्र उन्होंने रखा है, इसमें होमर का क्या दोष? यदि उन देवों की चारित्रिक विशेषताओं में होमर हेरफेर करते तो परिवर्तन के दोषी ठहराए जाते, मिथक विरोधी कहे जाते। यह ठीक है कि वीरों के चरित्रों में भी कभी कभी निर्बलता के स्थल आए हैं, किंतु उन्हें बदल देना न तो सत्य के अनुकूल होता न परंपरा के। सज्जन का दुख भोग और दुर्जन का सुख भोग जब संसार में देखा जाता है तब कवि क्या करे? जबरदस्ती सज्जन से सुख और दुर्जन से दुख कैसे भोगवाए? वह जैसा देखता है वैसा ही वर्णन कर देता है। नाटकों के संबंध में भी प्लेटो की आपत्तियों में सार नहीं है। एक तो किसी पात्र का अनुकरण करने से अभिनेता में उसकी चारित्रिक विशेषताएं आ ही जाए यह आवश्यक नहीं, और यदि आती है तो बुरे पात्रों के अनुकरण से जहां बुराइयों के आने की संभावना है, वहां अच्छे पात्रों के अनुकरण से अच्छाइयां भी तो आने की संभावना है। रंगमंच पर हत्या, विलाप आदि को देखकर सौहृदियों की सुरुचि को ठेस पहुंचती है, यह ठीक है, पर यथार्थवादी कहेगा कि जीवन में ऐसी बातें तो होती ही है, तब उसके प्रदर्शन या प्रतिरूपण में क्या हानि है? केवल नाटक देखने से राष्ट्र का चित्र ना बिगड़ता है ना बिगड़ता है। यदि नाटक देखने मात्र से चित्र बनता बिगड़ता तो व्यक्ति या समाज या राष्ट्र का चित्र एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ देना कितना आसान होता। अभिनेता गंभीर तथा हल्के पात्रों का अनुकरण समान दक्षता और सफलता से नहीं कर सकता। यह तर्क की प्रत्यक्ष समर्थित नहीं है। वस्तुतः अभिनय कला का वैशिष्ट्य तो इसी में है कि अनुकार्य चाहे जैसा भी हो, अनुकर्ता उसका विश्वसनीय अनुकरण कर ले। साधारण और असाधारण अभिनेता में यही अंतर होता है। काव्य अंतः प्रेरणा से उत्पन्न और भावमूलक होता है, इसलिए वह काव्य है, अन्यथा तर्क प्रसूत और तर्काश्रित होने से वह भी दर्शन बन जाता। भावमूलक होने से ही काव्य सरस होता है और तर्कमूलक होने से ही दर्शन नीरस। काव्य की भावमूलकता और सरसता उसके गुण है, दोष नहीं। सर्वत्र तर्क की प्रतिष्ठा हृदय और मस्तिष्क के अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व के संतुलन और सामंजस्य के लिए कहाँ तक वांछनीय होगी, यह भी विचारणीय है। काव्य मनोवेगों का पोषण और सेचन करता है, इसलिए अवांछनीय है। इस आपत्ति का विशद उत्तर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दिया है, इसे हम आगे देखेंगे। उपयुक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि प्लेटो ने काव्य नाटक में जो दोष दिखाए हैं वे वास्तविक से अधिक आयासी हैं। बर्टेड रसल का कहना ठीक ही लगता है कि प्लेटो के अनुदार विचारों में ऐसी सजधज के साथ प्रस्तुत करने की कला थी कि वे भावी युगों को प्रवंचित करते रहे। प्लेटो के अनुसार काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। फेड्रुस में सुक्रात के मुंह से प्लेटो कहलवाते हैं। तीसरे प्रकार का उन्माद उनका है जो काव्य देवी से आविष्ट होते हैं। काव्य देवी कोमल और निर्मल आत्मा को अपने अधिकार में लेकर और उसमें उन्माद जगाकर प्रतीक प्रगीत और अन्य कविताओं को उत्पन्न करती है, किंतु जो अपनी आत्मा में काव्य देवी के उन्माद के स्पर्श के बिना दरवाजे पर आता है और सोचता है कि कला की सहायता से मंदिर में प्रवेश पा लेगा, तो मैं कह देता हूँ उसका और उसकी कविता का प्रवेश नहीं हो सकता। जब कोई स्वस्थ चित्त व्यक्ति उन्मत्त से प्रतिद्वंदता करता है तो कहीं का नहीं रहता, हवा में उड़ जाता है। इसी विचार को कुछ अधिक विस्तार से इयोन में भी प्लेटो ने उपस्थित किया है। काव्य देवी मनुष्यों को स्वयं प्रेरित करती है, कारण कि सभी अच्छे कवि, चाहे वे महाकाव्य के रचयिता हों अथवा प्रगीत के, अपनी कविता की रचना कला के द्वारा नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे अंतः प्रेरित और आविष्ट होते हैं। प्रगीतकार स्वयं कहते हैं कि एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हुई मधुमक्खियों के समान वे अपने गीत काव्य देवी के उद्यानों तथा गुफाओं से और मधुमय निर्झरों से चुनकर लाते हैं। और यह सत्य है कि उन्होंने कवि प्रफुल्ल सपक्ष और निर्मल जीव हैं, तब भी उनमें कोई नवीन उन्मेष नहीं हो सकता जब तक उनमें अंतः प्रेरणा न जगे, उसका ज्ञान लुप्त न हो और वह आत्मविस्मृत न हो। जब तक वह इस दिशा में नहीं पहुंचता, तब तक वह शक्तिहीन है और उसकी देववाणी मुंह वे अर्थात कवि किसी के संबंध में कला के नियमों के अनुसार कुछ नहीं करते। वे अंतः प्रेरित या वशीभूत कोई कवि तो रोज स्तोत्र की रचना करता है, कोई वृंदगान की, कोई महाकाव्य की। इनमें किसी एक में जो अच्छा होता है वह दूसरे में अच्छा नहीं होता, कारण कि वह कला से नहीं बल्कि स्वर या शक्ति से गाता है। यदि उसने कला के नियमों से रचना सीखी होती तो वह एक के बदले सभी विषय से संबद्ध रचना करना जानता होता, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर कवियों के चित्त को उनसे अलग कर लेता है और अपने अभिकर्ता के रूप में उसका उपयोग करता है। इस प्रकार ईश्वर हमें यह दिखाना चाहता है कि ये सुंदर कविताएँ मानवीय नहीं बल्कि ईश्वरीय निमित्ताएँ हैं। कवि देवों के केवल व्याख्याता है जिनसे वे पृथक पृथक आविष्ट होते हैं। जब बुरे से बुरे कवियों के मुंह से ईश्वर के अच्छे से अच्छे गीत गाएं, तो क्या उससे यही प्रमाणित नहीं किया? इन उदाहरणों से निम्नलिखित निष्कर्ष है। पहला, कवि उन्मत्त व्यक्ति है, युवा काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित तथा आविष्ट होकर रचना करता है। दूसरा, कवि की रचना कला के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। कवि में तब तक कोई नवीन उन्मेष नहीं हो सकता जब तक कि अंतः प्रेरणा ना जगे। दूसरे शब्दों में कहें कि काव्य सर्जन के लिए सचेत कलात्मक प्रयास आवश्यक नहीं है। अंतः प्रेरणा की अवस्था में कवि ज्ञान शून्य और आत्मविस्मृत रहता है। काव्य देवी किसी कवि से जिस विद्या की रचना कराना चाहती है कराती है, उसमें कवि का कोई वश नहीं चलता। इसका अभिप्राय यह है कि विद्या का चयन भी कवि के अधिकार में नहीं है, कवि की विद्या का निर्धारण काव्य देवी करती है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता या गायक स्वयं ईश्वर है। प्लेटो को उपयुक्त मान्यताओं में तर्क कम और प्रौद्योगिक्ति अधिक है। काव्य को 16 आने ईश्वरीय प्रेरणा से प्रसूत कहना और उसमें कवि के सचेत काव्यात्मक प्रयास का कोई योगदान नहीं मानना निश्चय ही अतिवादी दृष्टिकोण है। काव्य को केवल ईश्वरीय प्रेरणा से प्रसूत मानने में कई विप्रतिपत्तियाँ हैं जो सिद्ध करती हैं कि परम तार्किक भी अपनी बात कहते समय तर्क से पल्ला छुड़ा लेता है। प्लेटो के अनुसार कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूकने का काम ईश्वर करता है, अथवा एक वीणा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। बांसुरी या वीणा में संगीत लहरी उत्पन्न करने की क्षमता तो है, किंतु वादक के अभाव में वह मूक नीरव पड़ी रहती है। यह स्थिति कवि की है, उसमें विद्यमान काव्य सर्जन की शक्ति तब तक रचना में प्रवृत्त नहीं होती जब तक कि ईश्वरीय प्रेरणा नहीं होती। प्रतिवादी पूछ सकता है कि यदि काव्य सृष्टि के मूल में ईश्वरीय प्रेरणा ही रहती है तो काव्य में गुणभेद और अस्त्रभेद क्यों आता है, अर्थात कोई काव्य उत्कृष्ट और कोई निकृष्ट क्यों होती है? ईश्वरीय प्रेरणा में उत्कृष्टता निकृष्टता का आरोप संगत नहीं होगा, क्योंकि वह तो भेद रहित और एकरस होनी चाहिए। अतः मानना पड़ता है कि काव्य सृष्टि में ईश्वरीय प्रेरणा ही सब कुछ नहीं है, कवि के सचेत कलात्मक योगदान का भी पर्याप्त महत्व है। विषय के चयन को लेकर रचना की समाप्ति तक रचयिता का कलात्मक प्रयास जागरूक और सक्रिय रहता है, और उसी के भेद से रचना के कलात्मक गुणवत्ता में तारतम्य हुआ करता है। यह ठीक है कि काव्य सृष्टि में प्रेरणा का योगदान असंख्य कवियों और सौंदर्य शास्त्रियों ने स्वीकार किया है, निमित्त उसका चाहे जो भी हो। वस्तुतः प्रेरणा का निमित्त क्या है, यह अनिर्वचनीय ही है। अतः आपत्ति ईश्वर को प्रेरणा का निमित्त मानने में उतनी नहीं जितनी उसे एकमात्र निमित्त मानने में है। दूसरी विप्रतिपत्ति यह है कि यदि काव्य सृष्टि ईश्वरीय प्रेरणा का ही परिणाम है तो प्लेटो उसे वर्जनीय क्यों मानते हैं और अपने आदर्श राज्य से कवि के निष्कासन का प्रस्ताव क्यों करते हैं? प्लेटो ईश्वर में किसी दोष की कल्पना नहीं करते। होमर की गणना वे इसलिए करते हैं कि होमर ने देवों में काम, क्रोध, लोभ, प्रतिशोध आदि दोषों का वर्णन किया है। यदि देव या ईश्वर निर्दोष है तो उनकी प्रेरणा से उत्पन्न काव्य को सदोष गर्हणीय और त्याज्य बताना विरोधाभास है। प्लेटो कहते हैं ईश्वर कवि विशेष की काव्य विशेष को ही प्रेरणा देता है, इसलिए कोई महाकाव्य लिखता है, कोई प्रगीत, कोई नाटक। इस कथन की दो सीमाएं हैं। पहली तो यह कि कवि एक ही प्रकार की रचनाएं सफलतापूर्वक करता है सही नहीं है। उदाहरण तक कालिदास ने महाकाव्य भी लिखे, प्रगीत भी, नाटक भी, और सभी विद्याओं में समान रूप से सफलता प्राप्त की। यही बात आधुनिक युग में रविन्द्रनाथ ठाकुर या जयशंकर प्रसाद पर लागू है। ऐसे उदाहरण सभी देशों के साहित्यों में मिलते हैं। प्लेटो की मान्यता अपने देश की रचनाओं के संबंध में ठीक हो सकती है, किंतु सार्वभौम सिद्धांत के रूप में इसे स्वीकार करना संभव नहीं है। कवि के उन्माद, आविष्टा, ज्ञान लोप, आत्मविस्मृति आदि को वाच्य रूप में ना ग्रहण करके लाक्षणिक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। ना तो कवि को पागलपन का दौरा पड़ता है, ना उस पर भूत चढ़ता है, ना वह होश हवास खोता है, ना अपनी हस्ती भुलाता है। यह सब कहने का अर्थ इतना ही है कि सृजन के क्षणों में कवि की चित्तवृत्ति सर्वथा एकाग्र होती है, बाह्य जगत से उसका लगाव टूटा सा रहता है, वह एक प्रकार से आत्मलीन हो जाता है। प्लेटो उन्माद, आविष्टा, ज्ञान लोप आदि के द्वारा इसी एकाग्रता को उजागर करना चाहते हैं। प्लेटो ने काव्य के तीन प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। पहला, अनुकरणात्मक प्रहसन और दुखांतक नाटक। दूसरा, वर्णनात्मक डिथिरैम प्रगीत। तीसरा, मिश्र महाकाव्य जैसे होमर की इलियड, ओडिसी। यूनान में यही तीन भेद प्रचलित है। प्लेटो ने इनका निर्देश मात्र दिया है। प्लेटो के अनुसार प्रगीत के तीन अंग हैं, शब्द, माधुर्य और लय। इनमें माधुर्य और लय शब्द पर आश्रित रहते हैं। यद्यपि माधुर्य और लय का उल्लेख प्लेटो ने प्रगीत के संदर्भ में ही किया है, किंतु ये काव्य मात्र के गुण हैं और इनकी स्थिति काव्य के तीनों भेदों में इष्ट है। प्रगीत का रूप चूंकि छोटा होता है, इसलिए उसमें माधुर्य और लय का प्राधान्य अपेक्षित है, अन्यथा कवि के उत्कर्षापकर्ष के ये दोनों अभिन्न धर्म है। हमने देखा है कि संगीत के प्रति प्लेटो का विशेष आग्रह है, इतना आग्रह कि संगीत को उन्होंने शिक्षा में अनिवार्य स्थान दिया है। अतः यह सर्वथा स्वाभाविक ही है कि माधुर्य और लय को अर्थात शब्द संगीत को वे काव्य का अनिवार्य गुण मानते। प्लेटो ने माधुर्य और लय का संबंध शैली से माना है और कहा है कि शैलीगत सौंदर्य, सामंजस्य, लालित्य और लय ये सभी सरलता पर निर्भर करते हैं। प्लेटो की दृष्टि में वह सरलता सरलता नहीं है जो प्रकरांतर से मूर्ता कही जा सकती है। सच्ची सरलता वह है जिसका संबंध चरित्र से, साथ ही समुचित और श्रेष्ठ रूप से व्यवस्थित मन से है। ये गुण काव्य के लिए ही नहीं बल्कि सृजनात्मक रचनात्मक कलाओं जैसे बुनाई, फुलकारी, स्थापत्य आदि के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। प्लेटो जो नियमन काव्य के लिए विहित करता है, वही अन्य कलाओं के लिए भी। उनका कहना है जिस शिव की काव्य से अपेक्षा की जाती है, उसकी अन्य कलाओं से भी अपेक्षा की जानी चाहिए। मूर्तिकला, स्थापत्य कला या अन्य कलाओं में किसी प्रकार के दोष और संयम, निकृष्टता और अभद्रता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जो इस नियमन का निर्वाह नहीं करता, उसे राज्य से निष्कासित कर देना उचित होगा, नहीं तो हमारे नागरिकों की रुचि भ्रष्ट हो जाएगी। हम अपने शासकों को नैतिक विकृत के चित्रणों के बीच विकसित नहीं होने दे सकते। हमारे कलाकार ऐसे होने चाहिए जिनमें सौंदर्य और लालित्य की सच्ची प्रकृति देखने की क्षमता हो, तभी हमारे युवक स्वस्थ भूमि में निर्मल दृश्यों और मनोहर ध्वनियों के बीच रह सकेंगे और प्रत्येक वस्तु में अच्छाई देख सकेंगे। मूल्यांकन। पहला, पाश्चात्य आलोचना के इतिहास में प्लेटो का स्थान जितना विशिष्ट है, उतना ही प्रभावी यह उनका प्रकृति क्षेत्र था। दर्शन और उद्देश्य था आदर्श गणराज्य की स्थापना, किंतु हृदय उन्हें कवि का मिला था और अभिव्यंजना में काव्य की रोचकता था, मोहकता थी। अतः आलोचक न होने पर भी उनके लेखन में आलोचना के जो संकेत हैं, वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने विधि जिसे दोनों ही रूपों में उत्तरवर्ती आलोचना को प्रभावित एवं निर्देशित किया है। एक ओर प्लेटो ने काव्य की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर भावी आलोचकों को, जिनमें उनके शिष्य अरस्तु भी हैं, काव्य की पक्षधरता के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी ओर कला परक विवेचन को गंभीर दार्शनिक निरूपता का विषय भी बनाया। काव्य एवं कला के स्वरूप, प्रयोजन और प्रभाव से संबंध अनेक विचारधाराओं के नवीन प्राचीनतम उद्भावक प्लेटो ही। दूसरा, प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय है, अर्थात वे यह बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। इसके विपरीत अरस्तु का दृष्टिकोण वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक है। उदाहरणतः दुखांतक अर्थात त्रेजडी के उपादान क्या है, उसके कौन से भेद होते हैं आदि विषयों का विवेचन करते हुए अरस्तु कतिपय विशिष्ट कृतियों के गुण दोषों का परीक्षण भी करते हैं। प्लेटो ऐसा कुछ नहीं करते, वे मानक निर्धारण कर देते हैं और कहते हैं कि रचना ऐसी ही होनी चाहिए। जो रचना उनकी कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती, वह हे है। तीसरा, प्लेटो के अनुसार साहित्य या कला की महत्ता एवं उत्कृष्टता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें बुद्धि के उन्नयन और आत्मा के उत्प्रेरण की कितनी क्षमता है। महान साहित्य में मनुष्य के नैतिक पक्ष को समृद्ध और संतुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। प्लेटो अस्पष्ट उपयोगितावादी और नैतिकतावादी है। उनकी दृष्टि में वही साहित्य सुंदर है जो सत्य और शिव है। उनके लिए सुंदर, सत्य और शिव पर्याय जैसे हैं। जो सत्य और शिव नहीं है, अर्थात जो समाज के लिए उपयोगी और नैतिक नहीं है, वह साहित्य ग्राह्य भी नहीं है। आनंद और उपदेश, साहित्य के इन दो प्रयोजनों में प्लेटो उपदेश को प्राथमिकता देते हैं। उपदेश के बाद यदि आनंद भी मिल जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, पर उपदेश के बाद भी, न उसके पहले न उसके बिना। इस प्रकार प्लेटो कला और साहित्य के प्रयोजन एवं मूल्य उसकी सामाजिकता मानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह विचार कलावाद का, जो व्यक्तिवाद पर आश्रित है, का प्रतिलोम है। चौथा, कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को है। प्लेटो से प्राप्त अनुकरण के सूत्र को उपवृहित कर अरस्तु ने इसे एक सिद्धांत का रूप दिया जिसकी मान्यता शताब्दियों तक बनी रही। यहाँ स्मरण रखने की बात है कि प्लेटो ने कला के संदर्भ में अनुकरण शब्द का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में ही किया है, क्योंकि उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यत्व रहता है, जो कि मिथ्या है वह हे है। कहना अनपेक्षित है कि प्लेटो की यह मान्यता भ्रांत है। कला में निहित सृजनशीलता को प्लेटो नहीं समझ पाते। यह कहना तो शायद उचित न हो, पर उसे स्वीकार तो नहीं ही करते हैं। यदि कला का उद्देश्य केवल अनुकरण होता तो फोटोग्राफ संभवतः चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण होता, क्योंकि वह किसी वस्तु की बिल्कुल सही नकल होता है। पर हम जानते हैं कि चित्रकार द्वारा अंकित चित्र, फोटोग्राफर द्वारा लिए गए फोटो में से कौन अधिक कलात्मक होता है। प्लेटो की भ्रांति का मूल कारण है कलागत सृजनशीलता को नजरअंदाज कर देना। वे यह भूल जाते हैं कलाकार किसी वस्तु की नकल नहीं करता, बल्कि कला के द्वारा उस वस्तु का आदर्शीकरण करता है। अर्थात वह वस्तु को केवल वस्तु के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे किसी प्रत्यय के प्रकटन के रूप में देखता है। वह दूसरों की दृष्टि से वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं करता, बल्कि उसके आवरण को अपनी प्रतिभा तथा कल्पना से भेद कर प्रत्यय को ही अधिक प्रदीप्त और रमणीय बनाकर प्रस्तुत करता है। प्लेटो ईश्वरीय प्रेरणा को कला दृष्टि का अनिवार्य साधन मानते हैं। व्युत्पत्ति, अभ्यास आदि का महत्व उनकी दृष्टि में नितांत गौण है। काव्य देवी के अनुग्रह और प्रसाद से ही कोई कवि उत्कृष्ट काव्य रचने में सफल होता है। यह दिव्य प्रेरणा एक प्रकार का उन्माद है जो सर्जक को पूर्णतः आविष्ट कर लेती है। वह विवश भाव से सर्जन में व्यापित हो जाती है। कला को ईश्वरीय प्रेरणा से उद्भूत कहकर प्लेटो उसका कोई उत्कर्ष सूचित नहीं करते, बल्कि प्रकरणांतर से उसे तर्क से निम्नतर सिद्ध करते हैं। छठा, दुखांतकों को देखने से या महाकाव्यांतर्गत शासन प्रसंगों को सुनने से दृष्टा श्रोता के मन में भाव के उद्वेलन के परिणाम स्वरूप जो उद्विग्नता या विहलता उत्पन्न होती है उसे विरेचन का पूर्वाभास माना जा सकता है। अरस्तु के हाथ पर पड़कर अनुकरण की तरह विरेचन भी एक सिद्धांत बन गया। प्लेटो को स्वच्छंदतावादी आलोचक का प्रवर्तक भी कहा जाता है। स्वच्छंदतावाद नियम का बंधन नहीं मानता, यह काव्य या कला से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को ही महत्व देता है। प्लेटो ने काव्य के प्रभाव मात्र पर ही विचार किया है। आठवां, प्लेटो ने दर्शन और काव्य के शाश्वत विरोध की बात कही है। उसके जैसा दार्शनिक से यह सुनकर आश्चर्य होता है। वस्तुतः दर्शन और काव्यालोचन एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है। बिना दार्शनिक भित्ति के काव्यालोचन के सैद्धांतिक पक्ष का, जिसे पर्याय भेद से सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, सम्यक विवेचन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि आगे चलकर सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की शाखा अवान्तर भेद के रूप में विकसित हुआ। कांत, हीगल, कोलरिज, क्रोसे आदि यूरोपीय और संकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त आदि भारतीय दार्शनिकों के विवेचन इसके प्रमाण है। नम्मा, प्लेटो के कला विषयक विवेचन में पर्याप्त पुनरुक्ति है। इसका कारण यह है कि अनेक संवादों में उन्होंने प्रसंगानुसार यह प्रश्न उठाया है और इसका समाधान किया है। संवादों का रचनाकाल दीर्घव्यापी है, स्वभावतः इसमें एक सूत्रता कायम रखना शक्य नहीं हो पाया है। फिर प्रसंग भेद से भी एक ही प्रश्न अनेक बार उठा है और उसका समाधान उसके अनुरूप करना पड़ा है, इसलिए यह पुनरुक्ति परिस्थिति की अनिवार्यता से उत्पन्न है, लेखन की असमर्थता से नहीं। दसवां, प्लेटो की तार्किकता प्रखर, अभिव्यंजना प्रांजल तथा शैली आकर्षक है। उनके व्यक्तित्व के उपादान कवि के हैं और कार्य उन्हें दार्शनिक का करना है। यह विरोधाभास या द्वंद्व ही उनकी कला विषयक विप्रतिपत्तियों का मूल है। यो उनका विरोध भी काव्य के लिए वरदान ही सिद्ध हुआ है, क्योंकि पक्ष विपक्ष के तर्कों के प्रवाह ने काव्यालोचना की भूमि को उर्वर रखा है। जो व्यक्ति 2500 वर्षों तक चर्चा का विषय बना रहा है, उसकी प्रासंगिकता को प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। समाप्त।